تفسير. سورت زخرف آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولما, اور جب دوربا بیان کی گئی اور جب دی گئی ابن مریم, ابن مریم کی مثلا مثال, اور ابن مریم کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی, اذا اس وقت قوموں کا, آپ کی قوم, اور آپ کی قوم سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم. کاف کی ضمیر آئی ہے رسول کے لیے, اور قوم سے مراد اہل قریش. تو اہل قریش نے کیا کیا؟ منہو, اس سے, اس مثال کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, یسدون, وہ چلا اٹھے, وہ لوگ پکار اٹھے, چیخنے لگے. یسدون اس کا روٹ ہے سواد دال, یا پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, ایسی آواز جو کسی شفاف مکان سے ٹکرا کر واپس آئے. اور اس طرح یہ لفظ جو ہے پھر یہ استعمال ہوتا ہے, جیسے شور کرنا, چیخنا, چلانا, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ پہلے تصدیہ بھی پڑھ چکی ہیں, تصدیتن. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا مثال تھی جب وہ دی گئی تو اہل مکہ چیخ اٹھے اور اہل مکہ پکار اٹھے. تو اس سلسلے میں ہمیں جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورت انبیاء کی یہ آیت پڑھی, سورت انبیاء کی آیت نمبر 98, 98, جب آپ نے پڑھا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, تم بھی اور اللہ کے سوا تم جن چیزوں کو پوچھتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تو اہل مکہ نے خوب پروپیگنڈا کیا, خوب اعتراض کیا, وہ چلا اٹھے. اور جو ہے پھر انہوں نے جو ہے کیا کہا, انہوں نے کہا, یہ اعتراض کیا کہ عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی جاتی ہے, تو کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اس طرح عبداللہ بن زبارہ جو تھا, اس نے بھی یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے محمد, کیا تم نہیں کہتے کہ عزیر نیک تھے, عیسیٰ نیک تھے اور مریم نیک تھی علیہ السلام؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس نے کہا کہ فرشتے, عیسیٰ, عزیر اور مریم, سب کی عبادت کچھ لوگ کرتے ہیں, تو کیا یہ سب جہنم میں جائیں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ اب اس کے یہ اعتراض کرنے پر کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ خاموش رہے. عبداللہ جب بولا تو آپ خاموش رہے, کیونکہ آپ خود کوئی جواب دینا پسند نہیں کرتے تھے, اور آپ جو تھے وہ اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ مشرکین کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب بذریعہ وہی جو ہے وہ ملے, تو وہ جواب آپ دیں. اب کیا ہوا کہ جب آپ خاموش ہو گئے تو اہل مکہ اور مشرکین جو تھے وہ آپ کی خاموشی پر کہکے لگانے لگے, کھل کھلا کر ہنسنے لگے. انہوں نے ایک شور اور ہنگامہ کھڑا کر دیا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری دلیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپ کرا دیا ہے, خاموش کروا دیا ہے. تو اب یہ اعتراض ان کا, اس کے معنی کیا تھے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بت ہیں جن کو ہم پوچھتے ہیں, جن کو پوجا گیا اور جو پوجنے والے ہیں, وہ دونوں جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ سورت انبیاء کی آیت 98 سے یہی بات پتا چلتی ہے. تو اب ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پوجا جاتا رہا, वो भी जाएंगे नऊज बिल्ला। फिर हजरत उजैर, उजैर को यहूदी जो थे वो अल्लाह ताला का बेटा कहते थे। फिर हजरत मरियम को भी ईसाइयों ने खुदाई में शरीक कर लिया था, तसलीस का जो अकीदा था। फिर फरिश्तों को जो थे वो अहले मक्का कहते हैं कि क्योंकि हम उनको पूछते हैं, फरिश्तों की बेटियां कहते हैं, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां वो कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो गोया कि ये सारे लोग जहन्नुम में जाएंगे। तो अब जो है इसका आपने जवाब कोई ना दिया, आप रहे खामोश और वो जो थे वो हंसने लगे, मजाक करने लगे। तो यहां पे भी यही बात है कि जब इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई तो आपकी कौम जो थी इज़ा कौमू का मिनहू, तो आपकी कौम ने इस मिसाल पर गुल मचा दिया, यसिदून चीखने लगे, चिल्लाने लगे, शोर खड़ा कर दिया। वकालू और वो कहने लगे आलिहतुना खैरुन, क्या हमारे माबूद ज्यादा अच्छे हैं, अम हुआ या वो, मा दरबूहु लका, नहीं मिसाल दी उन्होंने तेरे लिए, मा दरबूहु नहीं बयान किया उन्होंने इसको आपके लिए, इल्ला जदला मगर जदल के लिए। और आपको पता ही है कि जदल में क्या होता है कि गुफ्तगू में एक दूसरे पर गलबा हासिल करने की कोशिश करना, बेजा तकरार, कज वैसी दलील कोई नहीं होती, और फिर वो क्या करता है कि दूसरे पर वो चाहता है कि गालिब आ जाए। तो असल बात क्या है कि मिसाल देने का मकसद, दलील लाने का मकसद ये नहीं था कि वो कुछ समझना समझाना चाहते थे, बल्कि असल बात क्या थी, इल्ला जदला बहस तकरार, बल हुम कौमुन खसिमून, बल्कि वो कौम है खसिमून, झगड़ालू कौम। और आप देख लें झगड़े के लिए कुरान में 8 लफ्ज आए हैं, तो जदल का चौथा दर्जा है यानी चौथा नंबर आप कहें, और जो खसम है इसका छठा। और खसम क्या होता है कि किसी चीज के दावेदार होने की बिना पर दूसरे से झगड़ा करना। और खसम फरीके मुकदमा को कहते हैं जिनके दरमियान हुकूक के मामले में झगड़ा होता है। तो क्या है कि बल्कि ये लोग जो हैं ये खसम हैं, झगड़ालू हैं, खसूमत करने वाले हैं, और खसमून जो है ये सिर्फ मुशब्बा है। और हमें एक और भी जो है वो रवायत मिलती है, और इस रवायत में क्या है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से फरमाया लैसा अहदुन युअबदु मिन दूनिल्लाह फीही खैर, ये अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाती है उसमें खैर नहीं है। तो इस पर बाजों ने कहा कि फिर तो इसमें ईसा अलैहिस्सलाम भी दाखिल हैं, क्योंकि इनको नसारा ने माबूद बनाया और आप इनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो नबी सहले थे, तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल कर दी। अच्छा, अब इस सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बारे में क्या बात पता चलती है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है जब पूजा गया तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम को पता था कि मेरी कौम या दुनिया या उम्मत जो है वो मेरी इबादत कर रही है? आपको तो कुछ पता नहीं था, ना आपको मालूम था, ना आपने चाहा था, और इसके बावजूद जो है वो बाद में अकीदा तसलीस जो था वो राइज हो गया। तो असल बात क्या है, खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से भी इसकी गवाही मिलती है। सूरत माईदा, सूरत माईदा आयत नंबर 116, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَيْهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ। तो असल बात क्या है कि वो तो बेखबर थे और जो है उन्हें तो पता भी नहीं था। तो इसी मिसाल से, इसी दलील से आप समझ सकती हैं कि फरिश्ते जो हैं वो तो खुद इस्तग़फ़ार करते हैं कि जमीन पर जो है जमीन वाले जो हैं वो शिर्क कर रहे हैं, तो वो कहां चाहेंगे कि उनकी इबादत की जाए। और इसी तरह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम, और बीबी मरियम तो वैसे भी जो थी वो अल्लाह के चुने हुए बंदों में से थी, है ना। तो ये सारे पैगंबर और फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत में सफ़े बांधते हैं और अल्लाह के अहकाम की अताअत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो वो तो इससे मुबर्रा हैं। तो ना उनको पता और ना उन्होंने चाहा, लेकिन अब जो था वो मक्का जो थे वो शिर्क कर रहे थे और उनका मकसद क्या था कि जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आयत सुनाते, कोई तौहीद का पैगाम देते, तो वो लोग जो थे उस पर झगड़ा खड़ा कर देते। इन हुआ इल्ला अब्दुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं नहीं मगर वो बंदा। तो असल बात क्या है कि इब्ने मरियम जो हैं वो कुछ भी नहीं है। हुआ की जमीर आई है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं नहीं है इल्ला मगर अब्दुन बंदा, वो खुदा नहीं है, वो खुदा का बेटा नहीं है, वो कौन है? अब्दुन बंदा है। अनअमना अलैहि, हमने इनाम किया इस पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो यकीनन बहुत बेहतर हैं और असल बात क्या है कि वो तो मेरा बंदा है, वो तो मेरी बंदगी करने वाला है ना, और हमने उस पर जो है वो इनाम किया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर क्या इनाम किया? अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा किया, अल्लाह ताला ने और क्या इनाम किया कि उन्हें जो है वो मकबूल बनाया, उन्हें पैगंबर बनाया, उन्हें कमाल नबूवत देकर उन पर अपना फजल किया, उन्होंने पंगूड़े में कलाम किया और अल्लाह ताला ने उनको बहुत से मौजज़ात से नवाजा। अनअमना अलैही, कि हमने जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम पर इनाम किया। तो ये मेरा एक ऐसा बंदा है कि जिस पर जो है हमने इनाम किया है। और इसी तरह फिर फरमाया वजअलनाहु, और हमने बनाया उसको मसलन मिसाल बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए, कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बनी इसराइल के लिए जो है वो एक मिसाल बना दिया। और आप देखिए कि मसलन जो है मिसाल के इसके मानी भी हैं और इसके अलावा मसलन के मानी क्या होते हैं कि जो चीज मिसाल होती है जैसे कि वो एक इबरत होती है। तो हमने इसको बनी इसराइल के लिए जो है वो मिसाल बनाकर जो है वो खड़ा कर दिया। और आप देख लीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो कैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए वैसे तो रसूल बनाकर भेजा और उन्होंने पंगूड़े में कलाम किया और कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। वला नशाऊ, और अगर हम चाहते ला जालना, अलबत्ता हम बनाते मिनकुम तुम में मलाइकतन फरिश्ते फिल अर्द जमीन में यखलुफून, के वो खिलाफत करें। तो अगर हम चाहते तो तुम्हारे इब्ज फरिश्ते जमीन में पैदा करते जो कि इसमें जानशीनी करते। तो असल बात क्या है कि तुम्हें खत्म करके तुम्हारी जगह जमीन पर फरिश्तों को आबाद कर देते जो तुम्हारी तरह एक दूसरे के खलीफा बनते, जानशीनी करते। मतलब यह है कि फरिश्तों का आसमान पर रहना ऐसा शर्फ नहीं है कि उनकी इबादत की जाए, कि वो ऊपर हैं, अर्श पर हैं तो लोगों ने उनको जो है वो अल्लाह की खुदाई में शामिल कर लिया जैसे अहले मक्का कर रहे थे। तो अगर हम चाहते तो तुम्हें हटा देते और तुम्हारी जगह फरिश्तों को ले आते और फिर जो थे वो फरिश्ते जमीन पर रहते। तो किसी का ऊपर होना जो है वो कोई शर्फ की बात नहीं है, किसी का नीचे रहना इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो है वो कोई बहुत ही जो है उसके लिए कोई कमजोरी वाली बात है। तो असल बात ये है कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी कुदरत का नमूना है, बिल्कुल इसी तरह जो फरिश्ते हैं वो भी अल्लाह ताला की अजीबोगरीब जो है वो मखलूक है। तो अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला ने उसको भी अपनी एक मखलूक बनाया है और ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की मर्जी है कि उनके लिए ऊपर की जगह मुकर्रर की और इंसानों के लिए जो है वो नीचे की जगह मुकर्रर की। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बिन बाप के पैदा होना ये दलील नहीं है कि वो जो है वो अल्लाह का बंदा नहीं हो सकता और वो जो है वो खुदाई में शरीक है। और इसी तरह फरिश्तों का ऊपर रहना इस बात की दलील नहीं है कि फरिश्तों को इबादत में शामिल कर लिया जाए। तो उनका ये जो इतराज था ना कि फरिश्ते उनको भी पूजा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी, तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि बस अल्लाह ताला ने दरअसल जो है एक काम दिया है कि फरिश्तों को आसमान पर आबाद किया और इंसानों को जमीन पर, अल्लाह की मर्जी होती तो फरिश्तों को जमीन पर आबाद कर सकते थे। وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ, फिर फरमाया और बेशक वो, और हु की जमीर किसके लिए आई है, कहते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आई है कि और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं लाइल्मुन, निशानी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, पीछे आपने पढ़ा था अलामात, और अलम जो है झंडे को भी कहते हैं, निशानी के लिए भी अलम का लफ्ज इस्तेमाल होता है और अलामत के तौर पर भी आता है। और इसी तरह जो है यहां पे तो इल्म से मुराद क्या है, निशानी शर्त। तो बेशक वो जो है निशानी है लिस्साती कयामत के लिए, फला तम तरुन न बिहा, बस इसमें शक न कर। क्या फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी कयामत के लिए एक निशानी है, बस तुम शक ना करो। फला तम तरुन्ना, ये आप पढ़ी चुकी हैं, मीमरा या से है और मिरिया शक के लिए भी आता है। तो तुम हरगिज झगड़ा ना करो, हरगिज शक शुबा ना करो बिहा इसके साथ, वत्तबेउनी और मेरी पैरवी करो और मेरा इत्तबा करो, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है, ये वो रास्ता है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है। अब यहां पर आप देखिए कि इससे क्या मुराद है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो कयामत की एक निशानी है। तो इस सिलसिले में जो है वो हमारे सामने दो तरह की रवायात मिलती हैं, और एक रवायत तो ये है कि आयत का मतलब ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि अब कयामत करीब है। और इस सिलसिले में आप वो हदीस पढ़ ही चुकी हैं कि जिसमें जो है कयामत की अलामतें जो हैं वो बताई गई, और कयामत की अलामतों में से एक अलामत क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर, और ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जो है वो जमीन पर आना। तो अब आप देखिए कि ये जो कयामत की निशानियां जो है वो बताई गई, तो इस सिलसिले में वो निशानियां आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, पहले भी समझ चुकी हैं। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि जब वो कयामत की निशानियां एक एक करके जो है वो पूरी होने लगेंगी, तो उनमें से एक निशानी ये भी है कि अल्लाह ताला जो है दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारेंगे, और जमीन पर जब उतारेंगे तो ये नहीं कि पैगंबर के तौर पे, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के एक फर्द के तौर पर उनको जमीन पर जो है वो भेजा जाएगा। तो इसके मानी ये हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिस तरह पैदाइश जो है वो एक निशानी है, इसी तरह उनका दोबारा जहूर जो है वो ये है कि लोगों को कयामत के वकूअ पजीर होने का इल्म देना है, ये इसके मानी है। अच्छा, दूसरी इसकी राय, ये दूसरी जो इसके बारे में राय है वो ये है कि मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए और उनके पास मौजजात कैसे जबरदस्त थे कि मट्टी से परिंदा बनाते, मुर्दा जो था उसको दोबारा उठा खड़ा करते, गो के वो जो भी करते थे बिइज़्निल्लाह, आप पीछे पढ़ चुके हैं फबिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से करते थे। तो जैसे अगर मट्टी में जान पैदा हो सकती है कि वो परिंदा बन सकता है, और जो मर जाए दोबारा जिंदा हो सकता है, तो इसके मानी ये हैं कि अगर जो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकता है, और फिर उस अल्लाह के हुक्म पर अगर वो एक बंदे को मट्टी से जो है, जो बंदा मट्टी से बना था उसमें जान डाल सकते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से, तो फिर अल्लाह ताला दोबारा मुर्दों को जिंदा क्यों नहीं कर सकता। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है क्या है, दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम का जो वजूद है वो भी कयामत की एक अलामत है। क्यों? क्योंकि आपका अपना वजूद और फिर आपके जो मोजात हैं वो इस बात की दलील हैं कि कयामत आ सकती है। तो बहरहाल वा इन्नहु लिस्साती के बेशक वो हैं कयामत का इल्म देने वाले। तो गोया के आपकी जो जात है वो कयामत के की एक निशानी है। फला तम करुन्ना बिहा, बस तुम उसमें शक ना करो। तो किसमें शक नहीं करना? कयामत में शक नहीं करना। हा की जमीर आई है ना, हु आता तो क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम में शक ना करो, दो बातें हो रही है ना। तो हा की जमीर कयामत के लिए है कि जो कयामत आने वाली है, ये जो सा आने वाली है इसके आने में कोई शक नहीं है, तुम इसमें शक ना करो। वत्तबेउन, और मेरी पैरवी करो। और आपको ये बात पता ही है कि यहाँ पे वत्तबेउनी है और या इल्लत का जो है वो गिर चुका है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो बात अहले मक्का के सामने जो है वो रखी जा रही है वो ये है कि अहले मक्का कयामत के बारे में शक ना करो, मनाजरा बाजी में उलझो मत और उलझाओ नहीं, और बहस और तकरार न करो, कयामत आने वाली है तो क्या करो कि तुम कयामत की तैयारी करो। तो रसूल अल्लाह की जबान से कुरैश को तंबीह की जा रही है, कयामत अकीदा कयामत का असबात, नंबर दो रसूल की अतात की दावत, और नंबर तीन हाजा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। मानी क्या है इसके कि दीने हक दीने इस्लाम सीधा रास्ता है। वला यसुद्दन्नकुम शैतान, और तुम्हें रोक न दे शैतान। अब आप देख लीजिए कि क्यों कहा जा रहा है कि शैतान तुम्हें रोक ना दे, इसलिए इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और आपको वो बात तो याद ही है सूरत आराफ में शैतान का ये चैलेंज, लअक्उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं लोगों को गुमराह करने के लिए इनकी घात में तेरी सीधी राह पर बैठूंगा। तो मतलब क्या था कि मैं छुप कर बैठूंगा और सीधे रास्ते से इनको जो है वो गुमराह करने की कोशिश करूंगा। तो शैतान जो है हमारा अजली और अब्दी दुश्मन जो है वो क्या चाहता है, वो सिराते मुस्तकीम से मुसलमानों को, इंसानों को, पूरी की पूरी इंसानियत को हटाना चाहता है, वो आने ही नहीं देता। और अगर कोई आ जाए तो फिर उसके लिए क्या करता है कि बहुत सी ऐसी गलत चीजें उसको बताता है, इंसान को सिखाता है कि इंसान जो है ताकि सिराते मुस्तकीम से जो है वो बहक जाए, सिराते मुस्तकीम से जो है इंसान हट जाए। तो असल बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये पैगाम दिया जा रहा है कि कयामत आने वाली है और शैतान के उलझावे और बातों में लगकर कयामत की तैयारी जो है उसको छोड़ ना दीजिए, क्योंकि कयामत का वक्त बड़ा ही सख्त होगा। तो कयामत की तैयारी से कौन रोकता है, कौन है जो कि कयामत की तैयारी से बाज रखता है, और वो है शैतान। अब सवाल ये पैदा होता है कि शैतान जो है ये कयामत की तैयारी से कैसे रोकता है। तो इस सिलसिले में आप शैतान की चालें, शैतान के वसवसे और जो शैतान की जो हरबे हैं उसको आप समझें, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हमें बहुत सी जो है वो अहदीस मिलती हैं और बातें मिलती हैं, और उन तमाम बातों को अगर आप जमा करें तो क्या बात हमारे सामने आती है कि शैतान जो है वो इंसान की खून के अंदर इस तरह गर्दिश करता है, इंसान की रगों में इस तरह गर्दिश करता है जैसे कि खून। तो क्या करता है कि वो आगे से पीछे से इंसान को सिराते मुस्तकीम के रास्ते से जो है वो हटाना चाहता है, और फिर हटा भी देता है क्योंकि वो दुनिया को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। वो इंसान को हराम जो है उसको हलाल बनाकर पेश करता है, वो बताता है कि हलाल इतना थोड़ा सा और हराम जो है वो क्या है कि हराम जो है वो इतना ज्यादा, तो हलाल से क्या बनेगा। तो असल बात क्या है कि इंसान का दिल जो है वो शैतान के बहकावों में लग जाता है ना, ख्वाहिशात की पैरवी करने लगना। ये जो आपने कल के सबक में हदीस पढ़ी थी तो उसमें भी तो यही है ना कि خواہشات کی پیروی جو ہے وہ کون ہم سے کرواتا ہے، کون ہمارے دل میں لا کر پیش کرتا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہوشیار در حقیقت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی سنوارنے میں لگ گیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نفس کی ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگایا اور اللہ پر غلط توقع باندھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اعذر اللہ الی امری اخرا، اعذر اللہ الی امری اخرا اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی، یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور پھر بھی وہ نیک نہ بن سکا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کے پاس کچھ بھی کہنے کو نہ ہوگا۔ تو وقت کا گزرتا چلے جانا اور شیطان کے بہکاموں میں الجھتے رہنا اور آخرت کی تیاری نہ کرنا، کیونکہ بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ ابھی تو جوان ہے، ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی، یا کہتے ہیں یہ تو خوشحالی کے دن ہے، یہ تو مزے کے دن ہے، یہ تو کھیلنے کودنے کے دن ہے، دیکھا جائے گا بڑی زندگی پڑی ہے پھر ہم تیاری کر لیں گے۔ تو وقت کیا ہے کہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، جوانی بڑھاپے میں ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا موت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور صحت بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور دولت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، ہاتھ ملتا رہتا ہے اور اس کی کوئی بھی تیاری نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ پھر توجہ دلائی جا رہی ہے، اور نہ روک دے تم کو شیطان، بے شک وہ تمہارا علانیہ دشمن ہے، عدو مبین، مبین لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ خود وہ اطاعت سے رکا اور لوگوں کو روکتا ہے، تو لازم میں فعل کا اثر صرف کرنے والے تک ہوتا ہے، متعدی کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو بھی لگتا ہے۔ ولما جاء عیسیٰ بالبیناتی، اور جب آیا عیسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ، اب بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نشانیاں لے کر آئے تھے، اور بینات ان کی جمع ہے بینات، صریح واضح نشانیوں کو کہتے ہیں۔ قالا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، اور آپ کو بتائیے جا کے ساتھ جب با جاتا ہے تو معنی کیا ہوتے ہیں؟ لانا، اور اگر صرف جا ہوتا تو معنی تھے آنا، تو اب چونکہ جا یہ تو آیا نا، تو اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن ہے، تو میں لایا ہوں تمہارے پاس، بالحکمتی، حکمت، تو معنی یہ ہے کہ میں تمہارے پاس جو ہے وہ حکمت لے کر آیا ہوں، اور حکمت جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ شرعی احکام کی حکمت، کہ شرعی احکام کیوں نازل کیے گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی مقاصد، ان کی بعثت کے مقاصد میں سے نمبر ایک شرعی معاملات کی، شرعی احکام کی حکمت، نمبر دو ولے ابینا لکم، اور میں بیان کروں، اور آپ دیکھیں شد آئی ہے، اور حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، تو جہاں پہ شد ہے وہاں پہ دو یا ہے نا، وہ ابینا، اور میں بیان کروں، میں حقیقت کھول دوں، واضح کر دوں، لکم، تمہارے لیے، کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیزیں، تختلفون فیہ، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو بنی اسرائیل کس میں اختلاف کرتے تھے، ان کے اختلافات کیا تھے؟ اس سلسلے میں اب آپ دیکھیے کہ مثلا بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ اختلاف کرتے تھے اس بات پر کہ قیامت، قیامت کے بارے میں ان کے کچھ عقیدے تھے، جن میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ عند اللہ ان کی مسئولیت نہیں ہے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں ہونا۔ ایسا وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ، نا کہ ہم جو ہیں بیٹے ہیں اللہ کے، چہیتے ہیں اللہ کے۔ اور پھر بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے تھے جنت انہی کا حق ہے، دوزخ کی آگ تو ان کو چھو بھی نہیں سکتی۔ تو بنی اسرائیل کے قیامت کے بارے میں کچھ عقائد تھے جو کہ جیسے مختلف تھے، اختلاف تھا اس میں۔ یا پھر کہتے تھے اگر چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے، لن تمسن النار الا ایام معدودہ، بہت تھوڑی مختصر جو ہے ہمیں چھوئے گی۔ پھر ان کا جو ہے اور کیا اختلاف تھا کہ انہوں نے حلال کو حرام کر لیا تھا، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے خود کہا ولی احل لکم بعد الذی حرم علیکم، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تمہاری سرکشی کی وجہ سے تم پر حرام کر دی گئی ہیں وہ اللہ کے حکم سے تم پر حلال کر دوں۔ آج دیکھیں امت مسلمہ کا کیا حال ہے. آج امت مسلمہ جو ہے, آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں, ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے, اور یہ کہہ کے اور یہ سوچ کر گزر نہ جائیں کہ بات بنی اسرائیل کی اور ان کے ایسے خراب خراب عقیدے تھے, یا اہل مکہ کی ہو رہی ہے ان کے خراب عقیدے تھے. اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. آج امت مسلمہ کیا کہتی ہے, کچھ ربیع الاول کا مہینہ ہے, لوگ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ میلاد النبی کی جو ہے وہ محفل منعقد کر کے پھر کہتے ہیں کہ اب ہم بخشے گئے اور ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم امت محمدی میں سے ہیں, ہماری تو شفاعت ہو ہی جانی ہے, اس لیے ہمیں کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں تو جو چاہے کرتے چلے جائے. تو ان ساری باتوں سے پھر ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ جب قرآن میں بار بار کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو کسی کا حسب نسب, کسی سے خالی محبت کرنا, جیسے کہ اللہ کے نبی سے بھی صرف محبت ہے اور عمل نہیں کر رہے قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق, اگر اعمال نہیں ہے تو یہ چیز انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی. تو یہاں پہ بھی بات کیا ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اختلافات کو جو تھا وہ دور کیا, کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ اختلافات کو دور کرتا ہے نا, تو ہمارے لیے پھر عمل کا اصول کیا ہے کہ جس چیز میں بھی ہمیں اختلاف ہم میں پیدا ہو جائے, گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان, والدین اور اولاد کے درمیان, دوستوں کے درمیان, قوموں کے درمیان, ملکوں کے درمیان, تو پھر کیا کرنا چاہیے, فردہ الی اللہ. آپ سورت نساء میں پڑھ چکی, آپ سورت جو ہے وہ نور میں پڑھ چکی, احزاب وغیرہ میں, ان صورتوں میں آپ پہلے قرآن میں کئی دفعہ پڑھ چکی, تو کیا کرو کہ اس معاملے کا رخ اللہ کی طرف پھیرو. تو کیا کرو, قرآن سے رہنمائی لو, نمبر دو رسول کی طرف پھیرو, رسول کی سیرت سے اس اختلاف کا حل نکالو. تو اصل بات کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بعثت جو ہے اس کے مقاصد بتا رہے ہیں, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں فتق اللہ, بس اللہ سے ڈرو. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا ڈر ہے جس میں انسان سنجیدہ ہوتا ہے تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور سوال بھی پوچھتے ہیں, لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہے بال کی کھال ادھیڑنا, مقصد ہوتا ہے منہ شگافیاں کرنا. کبھی ایک عالم سے پوچھیں گے, پھر دوسرے سے پوچھیں گے, پھر تیسرے سے پوچھیں گے, پھر کہیں گے فلاں نے تو یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, حتیٰ کہ جب ان کو اپنے من پسند مسئلے کا حل مل جاتا ہے پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں. تو اختلافات حل کیسے ہوتے ہیں, اب قرآن موجود ہے اور امت مسلمہ لڑ رہی ہے, مر رہی ہے, مسلمان گھرانوں میں, فیملیز میں, مساجد میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اس لیے کہ تقویٰ نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. بعض اوقات واقعی بعض لوگ مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ان کو جب حل قرآن و حدیث کی روشنی بتا دیا جاتا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ان کا اختلاف دور ہو جاتا ہے. جو حل نہیں چاہتے نا, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, ان کو جب حل بتایا بھی جاتا ہے جو ان کے گھروں کے اندر موجود ہے قرآن اور سیرت اور حدیث کی روشنی میں, تو ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے. پھر کیا ہے کہ جیسے بات کا پتنگڑ بنتا چلا جاتا ہے, وہ اس کو بہت طول دیتے ہیں, خود الجھتے ہیں, عوام کو الجھاتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں, دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اصل میں تمام مسائل کا حل کیسے ہے, فتقوا اللہ, پس ڈرو اللہ سے. اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر سارے مسائل کا حل ہے. وَأَطِيعُونِي, اور میری اطاعت کرو, اور رسول کی پیروی. ان اللہ, بے شک اللہ, ہوا ربی, وہی میرا رب ہے. توحید کا پیغام ہے, وربکم, اور تمہارا رب بھی. فَعْبُدُوهُ, پس اسی کی عبادت کرو. تو اسی کی پوجا کرنی ہے, اسی کی اطاعت کرنی ہے, اسی کی نوکری کرنی ہے, اور ساری زندگی کرنی ہے, اور ہر جگہ پہ کرنی ہے, گھر کے اندر, گھر کے باہر, شادی کی محفلوں میں, غم کے موقعوں پر, اور ہر دور میں کرنی ہے, جوانی میں بھی, بڑھاپے میں بھی, جو بھی حال ہے, جو بھی حالات ہیں, جو بھی اوقات ہیں, گھر کی خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی, باہر جب نکل جائیں تب بھی, کسی مال میں جا رہے ہیں, کسی آفس میں جا رہے ہیں, ایئرپورٹ پر ہیں, امریکہ اور کینیڈا میں ہیں, یا پاکستان اور سعودیہ میں ہیں, ہر جگہ اللہ کی اطاعت. تو ھذا صراط مستقیم, یہی راستہ سیدھا ہے. ہے یہ تلوار کی طرح تیز اور نوکیلا, ये मुश्किल है लेकिन मुस्तकीम सीधा है, कौम से है और खड़ा होना और अकामत भी, और गोया के ऐसा रास्ता है बिल्कुल सीधा है, कोई टेढ़ नहीं है इसमें। फख्तलफ अल अहजाबू, फिर इख्तलाफ किया जमातों ने, हिज्ब की जमा अहजाब है, मिन बैनहिम आपस में, दईना दरमियान के लिए आता है, तो आपस में इनके दरमियान फिर भी इख्तलाफ हुआ। अब ये इख्तलाफ किस सिलसिले में था? ये इख्तलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में था कि पैगंबर सिखाने आया, बताने आया, और बात सुनकर समझने की बजाय फिर भी उन्होंने इख्तलाफ किया। इख्तलाफ, आप सोचे तो सही, ये इख्तलाफा बाबे इफ्तियाल से है, आपस में उन्होंने इख्तलाफ किया, हिज्ब की जमा है अहजाब, और आपको पता है कि वो ग्रोह जिसके नजरियात में एक शिद्दत भी हो, उन्होंने जो है वो इख्तलाफ किया। तो इससे जो है क्या बात पता चलती है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक ग्रोह ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये तो कुछ भी नहीं है, यानी उनकी जात के बारे में इख्तलाफ किया, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के पैगंबर होने का इनकार किया, उनसे दुश्मनी की, हत्ता के अपनी सोच के मुताबिक गोया कि उन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाकर दम लिया। दूसरा ग्रोह जो था वो क्या किया, वो दूसरी इंतहा पर पहुंचा, ईमान तो ले आए लेकिन जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अकीदत में गुलू करके उन्हें खुदा बना दिया, और जो है किसी ने उन्हें अल्लाह का बेटा कहा, किसी ने तीन खुदाओं में से एक खुदा, और किसी ने कहा गोया कि सिर्फ बस वही खुदा है, और इस तरह हर एक अपने अपने मौकफ की हमायत और जिद में हठधर्मी से काम लेता चला गया और आगे ही आगे बढ़ता चला गया, और बेशुमार फिरके वजूद में आ गए, और वो क्या करने लगे, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। जैसे आज उम्मते मोहम्मदी में से बाज लोग ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, और अल्लाह कुरान में बार बार कहता है कि अल्लाह के रसूल जितने भी आए सारे बशर थे, है ना। फिर दूसरी बात हमें क्या पता चलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन जो है वो ये नहीं समझते कि आपकी अताअत भी करनी है, और अताअत किसकी करते हैं, किसी जो है वो क्रिकेटर की, कोई ये जो प्लेयर है ना, कोई क्रिकेट का है, कोई फुटबॉल का है, तो जो जो ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ये इनके रोल मॉडल बन गए, घंटों बैठ के देखते हैं ये मैच जो होते हैं और भूल जाते हैं कि फराइज और जिम्मेदारियां क्या हैं, या फिर मॉडलिंग करने वाले मर्द और औरतें, और खास तौर पर औरत को से जो है ना मॉडलिंग करवाई जाती है, तो फिल्मी एक्टर्स, ये रक्स करने वाले लोग, और ये रक्स करने वाले और ये बेहयाई के अड्डे खोलने वाली औरतें जो हैं, अब उनको कहा जाता है कि सकाफा, और फिर उनको क्या कहा जाता है कि वो तो सकाफत का प्रचार करने वाली हैं, और फिर उनको जो है वो फन का मुजाहरा करने वाले और फन, और फिर लोगों ने उनको अपना रोल मॉडल बना लिया, कपड़े ऐसे पहने हैं और बात ऐसे करनी है, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए जैसे लेडी डियाना का है, वैसे स्माइल भी लेडी डियाना जैसी होनी चाहिए, और फला इस तरह से बात करता है। तो असल बात क्या है, फवैलुल्लज़ीना ज़लमू, पस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, मिन अज़ाब यौमिन अलीम, और जुल्म से मुराद अल्लाह का इनकार, रसूल का इनकार, अल्लाह के भेजे हुए जो पैगाम और सहीफे और किताबें थी उनका इनकार, और जो है दीन के अंदर तब्दीली करना, ये सारे जुल्म जो है वो शामिल हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तबाही है जिन्होंने बदअमलियां की, गुनाह किए, और क्या है, मिन अजाब यौमिन अलीम, अजाब दर्दनाक दिन का, तो ऐसा जुल्म करने वालों के लिए दर्दनाक दिन के अजाब की तबाही है। और आपको पता ही है हमजा लामीम अलम, तो ऐसा अजाब होगा और उस दिन कयामत के दिन का अजाब बड़ा ही दर्दनाक अजाब होगा, हल यंजुरूना, नहीं वो इंतजार करते, क्या वो इंतजार करते हैं, देखना और जैसे किसी चीज के इंतजार में बैठना, और ये कौन है जो के इंतजार करने वाले हैं, ये वही जो जिन्होंने ऊपर इख्तलाफ किया, फख्तलफ अल अहज़ाब, ये इंतजार करते हैं, इल्लसाता कयामत की घड़ी का, तो ये लोग कयामत की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, अंतातियाहुम बगततन, के आ जाए इन पर अचानक, वहुम ला यशउरून, और इन्हें खबर भी ना हो, اصل بات کیا ہے کہ تقوی اختیار کر کے اور رسول کی اطاعت کر کے یہ عمل جو ہے وہ اپنے ٹھیک نہیں کرتے, تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت ہی کا انکار کر رہے ہیں, اور قیامت جب آئے گی اتنی اچانک آئے گی کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے گا. آپ یہ حدیث پڑھ چکی کہ دو لوگوں نے تھان جو ہے وہ کھولا ہوا ہے, ایک خرید رہا ہے ایک بیچ رہا ہے, وہ جو ہے وہ سودے میں فائنلائز بھی نہیں ہو چکے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص نے مٹی سے حوض کو لیپا پوتا ہے, یعنی اس کو تیار کیا ہے اور جانوروں کو پانی پلانا چاہتا ہے, ابھی وہ جانور کو پانی بھی نہیں پلا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک شخص جو ہے وہ گائے کا یا جانور کا دودھ دھو رہا ہوگا, ابھی وہ اس سے نہیں ہٹے گا کہ قیامت آ جائے گی. کھانا کھا رہا ہے ایک شخص اور جو ہے ابھی نوالا منہ تک لے جا نہیں سکے گا, توڑا رہنے والا اور لے جا نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی. تو لوگوں قیامت بڑی اچانک آئے گی اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. شین عین را بال کو کہتے ہیں, اور بال بڑا باریک ہوتا ہے, تو جس طرح جو ہے وہ بال کی باریکی کا اندازہ نہیں ہوتا, تو یہ لفظ شعور کے لیے آتا ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, الاخلاء تمام گہرے دوست جگری دوست, اور خلیل کی جمع ہے الاخلاء, یعنی یہ جمع ہے اور خلیل واحد ہے. اور خلیل کا لفظ جو ہے یہ عام دوستی کے لیے نہیں بولا جاتا, بلکہ گہری اور پکی دوستی کے لیے آتا ہے. اور خلتن دوستی کا دل میں سرایت کر جانا. آپ دیکھیں آپ کھانا کھاتی ہیں اور آپ پھر لے کے جو ہے وہ تنکا, تو اپنی دانتوں کے درمیان خلال کرتی ہیں, تو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا جو ہے کیا ہوتا ہے, گیپ ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے. اسی سے آپ اس کے معنی یاد رکھیں کہ کسی کی محبت جو ہے سوراخ کر کے دل کے اندر جذب ہو جائے, تو یہ عام دوستی نہیں ہے. گہرے جگری پکے دوست جو ہیں اس دن کیا حال ہوگا, بعضهم لبعض عدو, کہ وہ بعض ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. تو گویا کہ سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. دنیا میں تو بڑی دوستیاں ہیں نا, اور بعض دوستیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں بھی جب مشکل آتی ہے تو چھٹ جاتی ہیں, لیکن قیامت کے دن کی مشکل اتنی شدید ہوگی, عذاب یوم علیم اتنا دردناک ہوگا کہ اس دن جو ہے لوگ کیا کریں گے, جو دنیا میں ایک دوسرے کے یار اور مددگار بنے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے سے پیچھا چھڑائیں گے, ایک دوسرے سے بھاگیں گے, ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے, اپنی جان چھڑائیں گے. اور انسان یہ چاہے گا کہ دوسرے کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو جو ہے وہ قیامت کے دن کی جو رسوائی اور ذلت اور پریشانی ہے اس سے جو ہے وہ بچا لے. تو اس سے جو ہے پھر کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ دوستیاں جو دنیا میں دولت کی بنا پر ہوتی ہیں, حسب نسب ذات, یا پھر یہ کہ ڈگری کرسی اقتدار, تو جو بھی دوستیاں ہیں جو دنیا میں مختلف مقاصد کی وجہ سے ہوتی ہیں, قیامت کے دن یہ ساری دوستیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, چھٹ جائیں گی. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ دوسرے کے کام آئے. عام طور پہ جب بھی دوستی کی جاتی ہے تو لوگ دوستیاں کیوں کرتے ہیں, ان کا کیا معیار ہوتا ہے؟ کسی کی آنکھیں پسند آ گئیں, کوئی ہماری ذات کا نکل آیا, کوئی وہ پیچھے سے کراچی کا ہے اور کوئی میمن اور کوئی جٹ بن گیا, اور پھر کوئی جو تھا وہ پنجاب کا تھا اور وہ پشتو بولتے تھے, اور ہمارا پاکستانی ملک ایک ہے, یہاں بیٹھ کر بھی پاکستان اگر کسی مقابلے میں جیت جائے, ٹیم کھیل رہی تھی تو یہاں پہ بیٹھ کر لوگوں نے نیشنلٹی بھی لے لی ہے, لیکن وہ خوشیاں مناتے ہیں, ہے نا. تو اب کوئی دوستیاں ملک کی بنا پہ ہے, کوئی قومیت کی بنا پر, کوئی حسب نسب کی بنا پر, اور کچھ دوستی کی بنا پر. کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ جگری دوست یہ گہرے دوست سارے ختم ہو جائیں گے, سوائے کس کے, الا المتقین. متقی کی جمع ہے متقین, تو تقوی رکھنے والے اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہی صرف باقی رہیں گے, تو اس کے سوا سارے دوستیاں ختم ہو جائیں گی. اور خلیل اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں میں سے سب سے بہترین دوست کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور آپ دیکھیں کہ ہر مشکل سے مشکل وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. और आज से बहुत साल पहले जब सीरत का मताला किया तो इस बात ने मुझे बड़ा ही लुत्फ और लज्जत दी कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जो थे खुद ही हिजरत की तैयारी किए हुए थे और आपकी बड़ी ही ख्वाहिश थी कि हिजरत के सफर में रसूल अल्लाह मुझे साथ लेके जाए। और आपने दो जानवर खूब खिला फिला कर मोटे तैयार किए हुए थे। फिर आप जो थे वो आपने जो है वो क्या किया कि दोपहर के दिन एक दिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर आते हैं तो कहते हैं कि सारे लोगों को हटा दो। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा थी, कहा कि ये तो आपके घर वाले ही हैं, लेकिन आपने कहा सबको हटाओ। और हटाने के बाद आपने उनको बताया कि मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है और आप इस सफर में मेरे साथ होंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने देखा कि मेरे वाले जो है वो रो रहे हैं ना, और उस दिन मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि कोई खुशी से भी रोता है। आप इस खुशी पर रो रहे थे कि हिजरत का सफर है और रसूल अल्लाह ने अपने साथ जाने में मुझे मुंतखिब किया है, मुझे साथ लेके जाएंगे। तो ये होते हैं दोस्त। और हमारी दोस्तियां कैसी हैं, जहां मुश्किल पड़ी दोस्त को जरूरत पेश आई तो हम कहते हैं कि नहीं भी हूं तो बहुत दोस्त, पर आज मैं आपके काम नहीं आ सकता, मेरे अपने मसाइल हैं, अपने औकात हैं, अपना मेरी सेहत है, अपने मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। तो असल बात क्या है, इसको दोस्ती कहते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, ये दोस्ती जो ईमान की बुनियाद पर है, जो अल्लाह के लिए है, ये वो दोस्ती है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी काम आएगी। और इस सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप जरूर याद रखिएगा कि कयामत के दिन जब अर्शे इलाही के सिवा कोई साया नहीं होगा, उस दिन सात किस्म के लोग अर्शे इलाही के साए में होंगे और इनमें से एक किस्म के अफराद वो दो आदमी होंगे जिन्होंने महज अल्लाह के लिए एक दूसरे से दोस्ती की, अल्लाह के लिए उन्होंने मोहब्बत की और इसी बुनियाद पर वो जमा हुए और इसी बुनियाद पर वो जुदा हुए। आप सोचें, कयामत का दिन है, इतना सख्त, जिसको कुरान कभी अबूसन कम तरीरा कहता है, कभी जो है उसके बारे में आता है कि वो तो जिलजिला तुन है, कभी आता है कि गाशिया है, वाकिया है, तगाबुन है, वो तो सा है ना, और मुख्तलिफ नामों से कुरान उसका उसको याद करता है। तो उस दिन अर्श के साए के सिवा कोई साया होगा भी नहीं और अल्लाह के लिए दोस्ती करने वालों को जो है वो अर्श के साए में जगह मिलेगी। तो ये है असल में किसी का खलील बनना कि उसको आखिरत की तैयारी में अपने साथ साथ लेकर चला जाए। फिर इसी तरह मुझे ये हदीस बड़ी ही खूबसूरत लगती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के लिए दो दोस्तों दोस्तों की मुलाकात का नक्शा खींचा है। एक शख्स अपने दोस्त से जो किसी दूसरी बस्ती में था मुलाकात के लिए चला, अल्लाह ने इसके रास्ते पर एक फरिश्ते को बिठा दिया। फरिश्ते ने इसे पूछा कहाँ का इरादा है, इसने जवाब दिया इस गांव में अपने भाई से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा क्या तुम्हारा इस पर कोई हक नेमत है जो वसूल करने जा रहे हो, इसने कहा नहीं, बस इस गर्ज से इसके इसके पास जा रहा हूँ कि मैं इससे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ता बोला लो सुनो, मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है और ये बशारत दी है कि वो भी तुझसे ऐसी ही मोहब्बत करता है जैसी तू इसकी खातिर अपने दोस्त से रखता है। और ये जो हदीस है इसको इमाम मुस्लिम ने जो है वो रवायत किया है। तो आप देख लीजिए कि मुत्तकी लोग जो है ना ये एक दूसरे के काम आएंगे और ये दोस्तियां बाकी रहेंगी। तो दुनिया में भी काम आते हैं और वहां भी ये दोस्तियां जो है ये कायम रहेंगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, होमवर्क क्या है फिर इसका, कि आज आप सब अपनी दोस्तियों का जायजा लें कि मैंने कितनी दोस्तियां हैं जो बस दुनिया के लिए की हैं और कितनी मेरी ऐसी हैं जो कि सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। और फिर बाज दोस्तियां हैं जो बहुत सालों से चल रही हैं और आम दोस्तियां हैं, तो उनके सामने ना दीन की बात करना चाहते हैं ना उनको दीन का पैगाम देना चाहते हैं, उनसे इतने मरूब हैं या डरे हुए हैं या परेशान हैं कि वो छूट ना जाएं या नाराज ना हो जाएं या फिर मुझे पार्टियों में और दावतों में बुलाना छोड़ ना दें। तो अल्लाह के लिए उनको भी खालिस कर सकते हैं, कैसे कि दावा करना शुरू करें, जो आप सीख रही हैं उन तक पहुंचाना शुरू करें, हत्ता कि एक बात उसको आगे आगे बढ़ाना शुरू कर दें और बताइए बताएं उनको कि मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करती हूँ, जो मैंने सीखा और पढ़ा है अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी पहुंचाऊं और कुरान की क्लास में उन्हें भी लेकर आए। एज ए लिसनर भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सुनकर ही उनकी जिंदगी में एक इनकलाब आ जाए। फिर दूसरा जो है वो अमल का उसूल क्या है, मुत्तकी कैसे बन सकते हैं, कैसे हमारे दिलों में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो सकता है कि जो अल्लाह के अहकामात हैं कुरान के अंदर और रसूल अल्लाह की सीरत से पता चलते हैं उन सब पर जो है वो अमल करना शुरू कर दें। पूरी कोशिश करें अमल करने की, अपने आप को बचा बचा कर रखना छोड़ दीजिए। इसलिए तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अल्लाह को ये ज्यादा पसंद है कि हम अल्लाह की राह में जो है मेहनत करें, मशक्कत करें। या इबादी, ए मेरे बंदो, यहाँ पे या भी है जो खत्म हो चुका है, ए मेरे बंदो, अब की जमा है इबाद, और इबाद कौन होते हैं? अल्लाह की नौकरी करने वाले, अल्लाह की गुलामी करने वाले। क्या, क्यों, कैसे, किस, व्हाट, व्हाई, खत्म हो जाता है फिर उनका। वो ये नहीं कहते कि क्या, क्यों, कैसे, बस एक ही उनका नारा होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजी और उमरा करने वाले को जो ये सदा बुलंद करनी होती है तो उसकी ये तरबियत की जाती है कि अब एक नई जिंदगी की तुम्हारी इब्तदा है, अब एहराम पहना है, पहला लिबास उतार दिया है, वो गुनाहों का लिबास था, वो अल्लाह की नाफरमानी जिस लिबास को पहन के तुम करते रहे, आज से तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी का लिबास पहन लिया है, अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा। तो या इबादी, ए मेरे बंदो, तो हम क्या, कैसे अल्लाह के बंदे बने? ऐ काश के मैं और आप भी अल्लाह के बंदों में शामिल हो जाएं। और ये ख्वाहिश से नहीं हो सकता जब तक के या नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जई इला रब्बी की रादियत मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आपके दिल में ये हूक नहीं उठती, आपके दिल में ये हसरत नहीं पैदा होती, दिल ये अंगड़ाइयां नहीं लेता, ये तमन्ना नहीं मचलती, आंखों से आंसू नहीं बहते, रातों को उठ उठ कर फिर रोते नहीं है कि अल्लाह मेरा नाम तेरे बंदों में है कि नहीं, ऐ अल्लाह तू मुझसे राजी है, मेरी वो खताएं भी मुझे बता दे जो मुझे पता भी नहीं और तू जानता है, ऐ अल्लाह मेरी खताएं मुझे बता, मुझे अपना पसंदीदा बंदा बना, मुझे पकड़ पकड़ कर सिराते मुस्तकीम पर चला। आइए अल्लाह के बंदों में, अल्लाह के पसंदीदा बंदों की फहरिस्त में शामिल होने के लिए जी और जान की बाजी लगाएं। ये रास्ता ईमान का रास्ता है, ये हरकत का रास्ता है, ये अमल का मैदान है, ये भागने वालों का, सारिउ इला मग़फिरति मिन रब्बिकुम वजन्ना, ये वो रास्ता है, ये शोहदा का रास्ता है, ये पैगंबरों का रास्ता है, ये सिद्दीकीन का, ये तारीख शोहदा की तारीख है जिन्होंने सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। तो आइए अल्लाह के बंदों में शामिल होने के लिए अपनी जी और जान के नजराने पेश करें, आइए अपनी जवानियों को तज कर दें, आइए अपने बुढ़ापों में जवानी का सा मंजर पेश करें। ला खौफुन अलैकुमुल यौमा, नहीं खौफ तुम्हारे लिए आज के दिन, कयामत के सख्त शदीद मुसीबत के दिन उनके लिए कोई खौफ नहीं है। वला अंतुम तहज़नून, और ना ही तुम जो है वो गमनाक हो गए। तो खौफ किसका होता है? आने वाले वक्त का, मुस्तकबिल का खौफ होता है कि पता नहीं क्या होगा, और हज़न किसका होता है? माजी का, पुरानी बातें पैरों परेशान रखती हैं, तो ना फ्यूचर की कोई फिक्र है और ना ही पास्ट की। अल्लज़ीना आमनु बिआयातिना, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए हमारी आयात के साथ। ये है निचोड़ इस सूरत का, अल्लज़ीना आमनु बिआयातिना वकानू मुस्लिमीन, जो हमारी आयात पर, हमारे कुरान पर ईमान ले आए और वो रहे फरमा बरदार मुस्लिम। तो इस्लाम कबूल किया अल्लाह की रजा के साथ और फिर उस पर जम गए। तो कुरान मजीद पढ़ना, समझना, इसके रूट वर्ड याद करना, इसकी तफसीर याद करना, इसके टेस्ट देना, ये क्या है? ये मेरा और आपका सरमाया है, ये मेरे और आपके बेहतरीन औकात, लम्हात और दिन हैं। इस पर जितनी मेहनत करें उतनी कम है, बेहतरीन मेहनत और मशक्कत। और अब जो 25वें पारे का टेस्ट होने वाला है, इसमें تمام جو سورتیں ہیں سورت فاتحہ سے لے کر الناس تک وہ بھی شامل ہیں. آپ نے ترتیب سے ناموں کو پڑھنا آپ کو آنا چاہیے کہ کس سورت کے نام کو کس سورت کے بعد کون سی سورت آتی ہے, اور اسی طرح آپ کو 30 پاروں کے نام بھی ترتیب سے آنے چاہیے کہ کون سے پارے کے بعد کون سا پارا آتا ہے. اور یہ مشکل کیسے لگے, آپ کو بریزہ کے نام تو سب آتے ہیں, چاولوں کے نام بھی آتے ہیں کہ کون سا چاول لمبا ہوتا ہے اور بریانی اچھی پکتی ہے, اور میک ڈونلڈ کا راستہ کدھر سے جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ٹم ہارٹن, اور پھر مال وہ ویسٹ ڈیل مال ہے یا پھر جو ہے یہ مسیساگا میں سب سے بڑا مال کا نام کیا ہے, کیا مال, تو ہلٹن سینٹر ہے یا جو بھی ہے یا اسکوئر مال جو ہے اسکوئر ون, تو آپ کیا کرتی ہیں ہے نا, تو ہم معلوم کر لیتے ہیں نا راستہ کہیں نہ کہیں سے, اور اگر گاڑی نہ بھی ہو تو بس سے بھی چلے جاتے ہیں, ان پڑھ بھی ہو تو جو من پسند چیزیں زیور گولڈ نہیں اب تو وائٹ گولڈ کا رواج ہے وہ بھی پتا ہے, اور کیا کیا جو ہے ہم پتا نہیں کر لیتے, تو جہاں دنیا کی بات ہے تو ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں. اور یہاں کی سٹیزن شپ لینے کے لیے آپ نے کتنے سوالوں کا ٹیسٹ دیا تھا, ہے نا 200, اور وہ یہاں کی ہسٹری, امریکہ کی سٹیزن شپ, برطانیہ کی, کینیڈا کی, آسٹریلیا کی, کیا کیا جتن نہیں کیے, کیا کیا نہیں کیا میں نے اور آپ نے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی خاطر میں اور آپ یہ سفر طے کرتے ہوئے کیوں ڈریں اور گھبرائیں. تو آئیے اللہ کے قرآن پر ایمان لائیں اور آئیے مسلم بن جائیں. ان کو کیا کہا جائے گا, ادخل الجنت, داخل ہو جاؤ جنت میں, انتم تم و ازواجکم, اور تمہاری بیویاں. بڑی خوبصورت آیات ہیں, اور اب آپ دیکھیے کہ ان آیات میں کیا بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ روز قیامت کی نفسا نفسی کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے متقی لوگوں کو جو ہے وہ کیا دیا جائے گا. تو متقی لوگ جو ہے وہ قیامت کے دن کی نفسا نفسی سے بچ جائیں گے. نمبر دو, متقی وہ ہوتے ہیں ایمان لاتے ہیں قرآن پر, اللہ کی آیات پر, اور وہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں, کیا کیوں کیسے میں زندگی ختم نہیں کرتے. اور پھر ان کا انعام کیا ہے, نمبر ون, ادخل الجنت, تم داخل ہو جاؤ جنت میں, اکیلے نہیں, وہ ازواجکم, اور تمہاری بیویاں, تو تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس کے ساتھ ہی تمہاری بیویاں بھی جنت میں جو ہیں وہ داخل ہو جائیں. تو یاد رکھیے کہ ازواج جو ہے ویسے تو زوج کی جمع ہے, تو شوہر کے لیے جو ہے اس کا زوج اس کی بیوی ہے, بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے, لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ شوہر جائیں گے تو پھر جو ان کی بیویاں جو نیک ہوں گی وہ بھی ساتھ ہوں گی وہاں پہ, کیونکہ خوشیوں کا نعمتوں کا مزہ نہیں آتا جب تک کہ میاں بیوی دونوں نہ ہوں. گھر میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ شوہر کہیں سے آئے تو ضرور پوچھتے ہیں کہ بچوں تمہاری ماں کہاں گئی, تو گھر خالی خالی لگتا ہے. تو اب جنت کا گھر ہے, وہاں کی دولت ہے, تو اب کیا ہے کہ تم بھی جاؤ گے اور تمہارے زوج بھی, تو دونوں جوڑا ہوں گے. اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو تمہارے دوست تھے, تمہارے ہمجولی تھے, کیونکہ باقی دوستیاں تو چھٹ گئیں جو کفر کی راستے میں تھیں, جو دنیا کے لیے تھی. متقی جو دوستیاں ہیں نا تقویٰ والی, وہ بھی دوست بھی اکٹھے ہوں گے. اور پھر کیا ہے, تحبرون, اور کیا کہا کہ تحبرون, اور تحبرون کا جو لفظ ہے آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ تحبرون جو ہے اس کے معنی کیا ہیں. آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا اخبار, آپ نے پچھلے سے پاروں میں جب پڑھا تھا کہ علماء ہیں, قصصین ہیں, تو اس میں اخبار پڑھا تھا. تو اخبار جو ہیں حابارا, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, اس کے ایک معنی ہوتے ہیں وہ نشان جو عمدہ اور خوبصورت معلوم ہو, جیسے حدیث بھی ہے نا کہ یخرج من النار رجل قد ذهب حبره وصبره, کہ آگ سے ایک آدمی نکلے گا جس کا حسن و جمال اور چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہوگی. تو عمدہ نشان کس سے لگتا ہے, اس کے لیے کوئی روشنائی چاہیے ہوتی ہے نا, کوئی سیاہی چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح سیاہی کو, روشنائی کو حبرن کہتے ہیں, اور شاعر محبر, ایسا شاعر جو بڑی عمدہ شاعری کرتا ہے. ऐसा कपड़ा जो बड़ा नरम मुलायम खूबसूरत हो, सौबुन हबीरुन, उसके लिए आता है नया भी हो तो उसके कहते हैं। इसी तरह अर्दुन महबारुन, ऐसी जमीन बड़ी जल्दी सरसब्ज हो जाए, बागो बहार गुलजार बन जाए। तो इसी तरह ऐसे बादल जो बड़े खूबसूरत बादल हों, अल हबीर उनको कहा जाता है। तो बहरहाल तो आलिम क्या करता है, आलिम के इल्म का असर जो है वो दो लोगों के दिलों को रोशन कर देता है ना। लोग नेकियां करने लगते हैं और नेकियां क्या हैं कि उससे इंसान के अंदर एक चमक पैदा होती है। तो यहां पर जो तोहबरून जो है कहा जा रहा है तो इसके मानी ये हैं कि उस दिन जो है, ये भी इसके मानिए, जैसे किसी को उम्दा और अच्छा कपड़ा पहना दिया जाए तो तुम्हारी इज्जत कराई जाएगी। अगर ये कहा जाए कि उनको अच्छी अच्छी नेमतें उस दिन मिलेंगी तो फिर मानिए कि तुम्हें खुशहाल कर दिया जाएगा। अगर इससे मुराद नक्शो निगार लिए जाए तो मुराद ये है कि तुम्हारा बनाव सिंघार किया जाएगा। तो वो दिन जो है वो मुत्तकी लोगों के लिए बड़ा ही खूबसूरत दिन होगा, उन्हें खुश कर दिया जाएगा। तो हबरूद, और आप देखें कि एक खुशी कैसी होती है कि इंसान जो है वो खूब मेकअप करता है, खूब ऐसी चीजें, आप बाजुकात होंठों पे कुछ चीज लगाते हैं जिससे होंठ चमकने लगते हैं, बाजुकात क्या होता है कि गालों पे लगाते हैं कि जिससे चमक पैदा हो जाए, बालों पे लगाते हैं, ऐसे कपड़े जो चमक वाले पहनते हैं। तो हम बाहर की चीजों से जो है वो दुनिया में भी चमक पैदा करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी मिसालें देते हैं कि जिससे हमें इस बात का तसव्वुर हो सके कि अल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश जो है वो कयामत के दिन पूरी कर देंगे, कि उस दिन तुम्हें खूबसूरत कर दिया जाएगा, तुम्हें सजा दिया जाएगा, तुम्हें जो है वो खुश रखा जाएगा, तुम्हारी खूब इज्जत की जाएगी। तो बात क्या है कि तुहबरून युताफु अलैहिम, और तौफ से है ये, और तवाफ भी है कि चक्कर लगाना है ना, तो दौर चलाया जाएगा क्योंकि मजारे मजहूल है, अलैहिम इन पर, इन अलैहिम कौन है, कुरान पर ईमान लाने वाले और रसूल का इत्तबा करने वाले, तौहीद परस्त, कयामत की तैयारी करने वाले जो मुत्तकी लोग हैं, तो उन पर चलाया जाएगा बेसिहाफिन। और सिहाफ जो है इसके मानी होते हैं रकाबियां या बड़े प्याले। साफतुन वाहिद है, और साफतुन जो है उस बड़ी रकाबी को कहते हैं जिसमें पांच आदमी मिलकर पेट भरकर खाना खा ले, या बड़ी रकाबी या बड़ा प्याला तो उसके लिए आता है। तो उस दिन तुम पर बड़ी रकाबियों का जो है वो उनको गर्दिश करवाया जाएगा। तो मानी क्या है, तुम्हें उठकर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे बुफे सिस्टम है या जो भी खाने का बेहतरीन इंतजाम भी होता है, तो क्या होता है कि टेबल पर लगा हुआ है तो आप जाएं और लें। तो अब क्या है कि नहीं, आप बैठे हुए हैं और आपके पास लेकर गिलमान, गिलमान मुखल्लदून कुरान में और जगह मिलता है, तो नौजवान होंगे, खूबसूरत होंगे, लड़के होंगे, दौड़ रहे होंगे और आगे पीछे खिदमत कर रहे होंगे कि आपको क्या चाहिए बैठे बैठे। और बड़ी खिदमत किसी की हो तो कहते हैं आप नहीं उठे, आपको यहीं ला देते हैं, फिर डिशेज उठा के दुनिया में भी बाज औकात आपके सामने रख दी जाती हैं। तो आप जरा इसका तसव्वुर करें। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बिसहाफिन आया है और आपने इस सूरत के बिल्कुल आगाज में जो है वो क्या पढ़ा था, आपने जो है बिल्कुल आगाज में भी आयत नंबर 5 में भी सफहन पढ़ा था, है ना। अब आप जो है इसको आपस में मिलाइएगा मत, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने कैसे मिलाया था पिछली सूरत, पिछले पारे में जो था वो क्या था, एक तो था युस हबून, है ना, और एक था युस जरून। हाँ, तो असल में क्या था, एक का मतलब ये था कि घसीटे जाओगे और दूसरे का मतलब क्या था, सुज्जीरत से था। हाँ, तो उसके मानी क्या थे कि जो है भड़काया जाएगा, तो लोगों ने उसको मिला लिया था। तो आप देखें कि सफन में स्वाद के बाद जो है क्या आया है, फा आया है और हा बाद में है, और ये जो है यहाँ पे बिसहाफिन, इसमें स्वाद के बाद हा आया है और फिर फा आया है। तो बहरहाल बिसहाफिन रकाबियां मिन ज़हबिन, सोने की, सोना, व अकवाब, और अकवाब जो है ये भी कूबुन वाहिद है, और अकवाब कहते हैं प्याले को, और प्याले होंगे, और ज़हब आया दरमियान में रकाबियों के बाद और अकवाब से पहले, तो रकाबियां भी सोने की होंगी और प्याले भी सोने के होंगे। तो तो बड़ी बात है ना कि सोने के होंगे। और यहां पे अल्लाह ताला ना आखिरत की जीनत बता रहे हैं, क्योंकि अहले मक्का ये कहते थे कि जीनत हमारे पास है और दुनिया हमारे पास है, और हमें रसूल क्यों नहीं बनाया गया जो हमारे सरदार हैं। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया था कि अगर अल्लाह तो इतना बेनियाज है, चाहे तो तुम्हारे घर सीढ़ियां छतें भी सोने की बना दे। जुखरुफ, ये सूरत जुखरुफ है। तो एक है दुनिया की जुखरुफ और एक है आखिरत की जुखरुफ। तो अब यहां पे आखिरत की जुखरुफ उसकी जीनत बताई जा रही है। वफीहा मा तश्तहील अनफुसु, और इसमें होगा क्या होगा, मा तश्तहील जो वो चाहें, और शीन हावा शहवत जो है ये इसे मुराद क्या होता है, शहव का क्या मतलब होता है, चाहना, और इंसान की जो नेचुरल डिजायर होती है ना उसको शहवत कहते हैं, तबई ख्वाहिश, फितरी ख्वाहिश कि जिसके हाथों इंसान मजबूर हो जाए। मसलन भूख आपको लगी हुई है, आपने सोने का इरादा कर लिया है लेकिन नींद ही नहीं आ रही, हत्ता के आपको अंदाजा भी नहीं हुआ आप उठे और आपका खुद ब खुद हाथ आपका फ्रिज की तरफ जा रहा है, खुद ब खुद हाथ आप किसी खाने की चीज को ढूंढ रहे हैं। तो फितरी ख्वाहिश, इसी तरह जिंसी ख्वाहिश फितरी ख्वाहिश, इसी तरह नींद भी फितरी ख्वाहिश है। जब नींद आती है, अक्सर आप पढ़ रहे होते हैं, मैं पढ़ रही होती हूँ, मेरी लाइनें लग रही होती हैं, और बाज़ ऐसा महसूस होता है कि मैं तो पढ़ रही थी, बड़े अच्छे नोट्स ले रही थी, और आंख खुलती है, ओह आधा घंटा ऊपर गुजर गया, या 10 मिनट या 20 मिनट, आप खुद ब खुद नींद आ गई। कहते हैं ना नींद तो सूली पर भी आ जाती है। तो क्या है कि बाज़ हमारी ख्वाहिशें फितरी ख्वाहिशात हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ भी तुम चाहोगे, नफ्स की जमा है अनफुस, और मुराद क्या है कि तुम्हारे जी जो कुछ भी चाहेंगे वो तुम्हें वहां पे मिलेगा। तो आप तमन्ना करेंगे, एक परिंदा है उड़कर जा रहा है जन्नत में, और आप तमन्ना करेंगे तो वो भुना भुनाया प्लेट में आपके सामने पेश हो जाएगा। दरख्त को आप देख रहे हैं फलों से लदा हुआ है, आप उसको देख के चाहेंगे कि मैं इसको खाऊं, वो शाख आपकी तरफ आ जाएगी और आप उसको खा सकेंगे। तो ये हमें ऐसी रवायतें मिलती हैं। तो क्या कहना चाहिए, सुभान अल्लाह। तो वहां पे जो कुछ भी इंसान चाहेगा वो उसको मिलेगा। वह तलज़ुल आयुन, और लाम जाल जाल, और इसके मानी क्या होते हैं, इसके मानी होते हैं जैसे किसी चीज का जो है वो लजीज होना, किसी चीज का बहुत ही मजे का होना। अच्छा, अब जो है एक तो है ना कि आप किसी चीज को खाएं तो फिर उसकी लज्जत का पता चलता है कि वो चीज उसका टेस्ट कैसा है। बार चीजें ऐसी होती हैं कि देखने को आंखों को लज्जत मिलनी चाहिए, है ना, तो जब तक वो देखने में अच्छी ना लगे तो खाने को दिल ही नहीं चाहता। दुनिया में तो ऐसा होता है ना कि बाज चीजें जायके के लिहाज से अच्छी होती हैं लेकिन देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन अल्लाह ताला अहले जन्नत की ऐसी ज़ियाफ़त करेंगे, ऐसी उनकी मेहमानदारी करेंगे कि वो चीजें जो हैं देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। आयुन आयन की जमा है, आंखों के लिए आता है, तो देखने में भी उनको बड़ी ही फरत बख्श और सुरूर उनको मिलेगा। बाज औकात मिल्क शेक बना हुआ है या दस्तरखान पर खाना लगा है, आपने सोचा था मुझे नहीं खाना, देखती हैं इतना अच्छा लगता है देखने में कि आप खुद ब खुद मजबूर हो जाती हैं कि मैं उसको खाऊं। तो ये क्या है कि उनकी जाहिरी तौर पर भी, जाहिरी जो उसकी खूबी है आराइश वो भी, और फिर देखने के लज्जत के लिहाज से, दोनों लिहाज से बहुत अच्छी नीमतें होंगी वहां पे। आप देखें, एक दफा एक फ्रूट चाट देखी, और एक दफा जो है वो एक जो है सलाद खाने का इत्तफाक हुआ, तो उसमें बीन्स है तो थोड़े थोड़े लेकिन डिफरेंट कलर के, इसी तरह उसमें शिमला मिर्च जो थी तो दो तीन रंग की, सब्ज भी सुर्ख भी पीली सी वो भी, फिर इसी तरह उसमें कलर क्वांटिटी ऑफ कलर बहुत थी, इसी तरह उसके अंदर जो थोड़ी थोड़ी चीजें डाली हुई थी देखने को भी इतनी खूबसूरत और खाने में बहुत अच्छी। और इसी तरह किसी ने ट्राइफल एक दफा बनाया, बहरीन की बात है और फिर अमेरिका की भी, के बहुत बड़े उसने शीशे के जार में उसको पेश किया, शीशे का बहुत बड़ा बर्तन था, तो मैंने कहा कि भी जरूरी था इस, मतलब इसमें क्यों, क्या कहती, नजर आता है तो दिल को और अच्छा लगता है कि पहली उसकी तय कौन सी है ट्राइफल की, फिर दूसरी फिर तीसरी, तो आगे आगे ना, तो इंसान का दिल खुश हो जाता है। आप खाना पकाती हैं फिर उस पर सब्ज धनिया क्यों डालती हैं, खुशबू भी टेस्ट भी, टेस्ट तो उसका कोई इतना खास नहीं होता लेकिन देखने को कितना अच्छा लगता है सब्ज धनिया। तो बहरहाल, वअन्तुम फीहा खालिदून, और तुम उसमें हमेशा रहोगे। ये बात बड़ी खुश करती है, क्योंकि दुनिया में हर वक्त धड़का लगा रहता है कि पता नहीं ये चीजें फिर मिल सकेंगी कि नहीं, पता नहीं हमेशा यहाँ रह सकेंगे कि नहीं। अतिलकल जन्नतु, और ये है वो जन्नत अल्लाती जो के ऊर इस समूहा, जिसके तुम वारिस बनाए गए, बिमा कुन तुम तामलून, जो तुम अमल किया करते थे। तो ऊर इस समूहा का रूट क्या है, वो रास्ता के अब जो है जन्नत जो है इसके वारिस बना दिया गया। ये आयत बड़ी ही खूबसूरत आयत है, और इससे जो है ये बात पता चलती है कि जन्नत जो है वो जब किसी को मिल जाएगी तो इंसान उसका जो है मालिक बन जाएगा। उसकी मलकियत जो है वो आरजी मलकियत नहीं होगी, बल्कि क्या है वो मुस्तकिल उसका मालिक होगा। बिमा कुन तुम तामलून, इस वजह से जो तुम दुनिया में करते रहे। लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुन, इसमें है तुम्हारे लिए फाकिहतुन कसीरतुन, फ्रूट बहुत से। अब आप देखिए कि आपने आयत नंबर 71 में पढ़ा कि उनके बर्तन कैसे होंगे, इस्तेमाल की चीजें। फिर नंबर 2 आपने ये पढ़ा कि आपस में जो है वो मियां बीवी जोड़ा जोड़ा होंगे, और ये भी पढ़ा कि दोस्त भी होंगे। गोया के इंसान नेमतों से लुत्फ जब उठाना चाहता है तो अकेला नहीं, चाहता है कुछ साथ हो, तो वो भी होंगे। फिर जो है ये भी पढ़ा कि खाने पीने की चीजें क्या होंगी। अब यहां पे बताया जा रहा है कि उनके खाने के लिए माकूलात और मशरूबात के अलावा जो है वो फवाके भी होंगे, और आप पढ़ ही चुकी कि फवाके जो है यहाँ पे फाकेहतुन जो है वाहिद है, और कुरान में इसका जमा भी इस्तेमाल हुआ है फवाके, है ना, और कसीरतुन वाहिद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये के ये जमा के लिए भी हो जाता है इस्तेमाल। तो फल बहुत से होंगे, और कौन से फल हैं ये, बेशुमार किस्म का ड्राई फ्रूट। और इसके और मानी क्या हैं कि जब खाएंगे तो फिर दिल लगी की बातें करेंगे, बड़े खुश होंगे। फाकिया जो है और किसके लिए इस्तेमाल होता है, कि हंसी खुशी के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। मिन्हा ताकुलून, इसमें से जो तुम खाओगे। तो गोया के जैसे खाने पीने के बाद अगर थोड़ी सी कोई कमी रह गई है तो फिर ड्राई फ्रूट मेवा जात उनको पेश किए जाएंगे। तो ये है जन्नती जो हैं उनको ये चीजें जो हैं वो दी जाएंगी, और ये चीजें क्यों मिलेंगी, बिमा कुन तुम तामलून, अमल की वजह से। अब दूसरी तरफ मुजरिमों का हाल क्या होगा, इन्नल मुजरिमीना, बेशक मुजरिम लोग, फी अजाबे जहन्नमा, जहन्नुम के अजाब में हैं, खालिदून हमेशा के लिए, ला युफत्तरु अनहुम, नहीं हल्का किया जाएगा इनसे। और फातारा जो है इसके मानी होते हैं किसी चीज की कुव्वत या रफ्तार में बतदरीज कमी का वाक्या होते जाना। जैसे आप तेज तेज चलते हैं और फिर क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी रफ्तार सुस्त हो जाती है, कब, जब आप थक जाते हैं। आप घर के काम सुबह से उठती हैं, सुबह आप तेज तेज करती हैं, जूं जूं शाम फिर रात होती है, आपकी तेजी में कमी आती चली जाती है। तो फतरा जो है इसके मानी क्या है कि कुव्वत के बाद कमजोरी और तेजी के बाद सुस्ती और ठहराव। इसी तरह फतरतुल वही, कि वही नाजिल हो रही थी फिर उसमें एक फतरा हो गया, उसमें एक वक्फा आ गया, ठहराव आ गया। इसी तरह फतूर लफ्ज भी आप बोलती हैं, है ना। तो गोया के मानी फिर इसके क्या है, गोया के तेजी के बाद सुस्ती आ जाना। अब लोगों को जो कि जहन्नमी हैं, जिस अजाब में वो हमेशा के लिए हैं, अब उनका वो अजाब उनसे कम नहीं किया जाएगा, उसमें ठहराव नहीं आएगा, उसको हल्का नहीं किया जाएगा। वहुम फीही मुबलिसून, और वो उसमें इंतहाई मायूस होंगे। और आप देख लीजिए कि ये मायूसी का सबसे आखिरी दर्जा है ना, यहां पे यास नहीं कहा, कनूत नहीं कहा, बल्कि इंतहाई मायूस के कोई उम्मीद नहीं है। और इबलीस भी इसी से है, इबलास ये बाबे फाल से है, इंतहाई मायूस होंगे। आमतौर पे दुनिया में जब मुश्किल आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो एक उम्मीद होती है कि थोड़े दिनों की है फिर ये कट जाएगी। अभी थोड़े दिनों की बात है, जॉब मिल जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी को ये कह दिया जाए कि नहीं तुम्हारा मर्ज ऐसा है, ला इलाज है, कभी ठीक नहीं होगा, अब उस शख्स की मायूसी का देखें। फिर एंग्जाइटी हो जाती है, क्या होता है, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ देता है। ये है कि वो भी मायूस हो जाएंगे, वमा ज़लमना हूं, और हमने इन पर कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानु हुम ज़ालिमीन, बल्कि ये थे खुद जुल्म करने वाले। हम जो है ज़मीरे जो है मुनफसिल है, तो क्या है मजीद इस बात को वाजे करने के लिए आई है कि अब वो जो इतनी दुख तकलीफ और परेशानियों में है, तो असल बात क्या है कि इन्होंने खुद ही जुल्म किया, उन्होंने पैगंबर की और पैगंबर की बात की कदर ही ना की, उन्होंने सारी जिंदगी शैतान के साथ गुजार दी, शैतान ने जो वसवास डाले उसके पीछे चलते रहे, वह ना दो। अब वो क्या करेंगे, वो पुकारेंगे, पुकार पुकार कर कहेंगे। आप याद रखें नून दाल या से है नदी पानी, और मुंह के अंदर जब जो है वो पानी होता है, थोड़ा सा मुंह हमारा गीला होता है, तो हम ऊंची आवाज में पुकार सकते हैं, तो वो पुकारेंगे और पुकार पुकार कर क्या कहेंगे, या मालिकू, ए मालिक। और मालिक जो है यहां पे अल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि जहन्नुम के दरोगा का नाम है। वो जहन्नुम के दरोगा को जो उसके ऊपर मुकर्रर होगा, उसको पुकार पुकार कर कहेंगे, क्या कहेंगे, ए जहन्नुम के दरोगा, ए मालिक, लियक्दी अलैना रब्बुक, के क्या हो कि आज जो है हमारे लिए तुम्हारा रब फैसला ही कर दे। और ले यकदी अलैना रब्बुक के मानी क्या है कि हमारे लिए मौत का फैसला ही कर दिया जाए। असल में ये जो लाम है ना, हम कहते हैं ना ताके, लामे इल्लत वगैरह के लिए आता है, और ये लाम जो है ये दुआया भी होता है कि अल्लाह हमें मौत ही दे दे। तो दुनिया में भी इंसान मुसीबत के वक्त में मौत मांगता है। मौत कब मांगता है, जब बड़ी मुश्किल में हो, बड़ी तकलीफ में हो, सोचता है कि काश के मुझे मौत ही आ जाए, मायूस है परेशान है कोई उसकी मदद नहीं करता, तो कहता है मुझे मौत ही आ जाए। तो अब वहां पर जो है ये लोग इतने गम में हैं, इतने परेशान हैं कि कहते हैं कि काश हम पर जो है वो मौत ही आ जाए। फिर आप देखिए कि मौत वो क्यों मांगेंगे, ताकि उस अजाब से जो है वो बच सकें। और ये वाली बात जो है कि कयामत के दिन वहां पे वो बड़ी तकलीफ में होंगे, आप सूरत अल मोमिन, सूरत अल मोमिन में भी पढ़ चुकी कि वहां पे क्या होगा, आयत नंबर 49 है, वकाल अल्लज़ीना फिन्नारी लिखज़नाती जहन्नमा उदउ रब्बकुम युखफ्फिफ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, है ना, वहां भी आप ये पढ़ चुकी कि वो ये कहेंगे कि तुम्हारा रब जो है वो हमारे लिए अजाब में कुछ कमी कर दे, दरखास्त करेंगे, बहुत ही परेशान हाल हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि अजाब की शिद्दत का जो हाल है उसमें क्या है कि रो रो कर दरखास्त कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि अजाब की जो है वो कमी कर दी जाए, लेकिन उन पर अजाब जो है वो कम नहीं किया जाएगा, उनकी कोई दरखास्त उनका चीखना चिल्लाना जो है वो अल्लाह की पकड़ को उन पर कम नहीं कर सकेगा, है ना। तो इससे फिर हमें क्या बात पता चलती है कि जब इंसान चाहता है कि अब उसे मौत आ जाए तो उसको फिर मौत नहीं आती, तो आखिरत के दिन हिसाब किताब के दिन जब वो अजाब में है तो चाहेंगे कि अब किसी तरह खत्म हो जाए हमारी जिंदगी और हम मर जाएं, तो खत्म नहीं होगी। قال انكم ماكثون, और माकिस की जमा ماكثون, और इसके मानी क्या होते हैं माकिस, ये इस्म फाइल है, और मीम काफ़सा के मानी होते हैं ठहरे रहना, यहां पे मुराद है हमेशा रहने वाले हो तुम, बाकी रहने वाले हो। لقد جئناكم بالحق, तहकीक हम आए थे तुम्हारे पास हक लेकर, तो हम तो आए थे ताकि तुम्हें जो है वो अल्लाह कयामत आखिरत जो है वो उसका बताया जा सके, तो हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आए थे। वलाकिन अक्सरुकुम लिलहक की कारिहून, और लेकिन तुम में से अक्सर ने जो है वो हक को नापसंद किया, कराहत, तुमने हक जो था तुम हक से नाखुश थे। कारिहून की जमा है कारिहून। अम अबरमु अमरन, क्या इन्होंने ठहरा ली है कोई बात, क्या इन्होंने पुख्ता कर ली है कोई बात, तदबीर, फाइना मुब्रेमून, पस बेशक हम भी जो है वो फैसला करने वाले हैं, पुख्ता बाग ठहराने वाले हैं। बारा मीन जो है इसके मानी होते हैं दो लड़ियों को, जैसे दो लड़ियां करके रस्सी बनाना। अब आप देखें कि अब्रा बल हबल के फिर मानी क्या है कि रस्सी को अच्छी तरह मजबूत बटना। तो बात क्या है, किसी बात का कतई फैसला कर लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछ रहे हैं क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला ही कर लिया है। तो अहले मक्का की उन खुफिया बातों की तरफ इशारा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो थे वो इकदाम उठाया करते थे, कभी आपको जलावतन करने का, कभी नऊज़ु बिल्लाह कत्ल करने का, या जेल में डालने का, या आपको नुकसान पहुंचाने का। और मुसलमानों को क्या इन्होंने जो है कुछ तदबीरें कर ली हैं, कुछ इकदाम करने का फैसला ही कर लिया है। फाइना मुब्रेमून, बस अच्छा फिर हम भी एक फैसला किए देते हैं। अम या सबूना, क्या ये समझते हैं, अन्ना ला नस्माऊ, कि हम नहीं सुनते, सिर्रहुम इनकी पोशीदा बातें, व नजवाहुम और इनकी सरगोशियां, क्योंकि वो छुप छुप कर अपनी महफिलों में फैसले करते थे ना। अल्लाह ताला कहते हैं क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी राज की बातें और इनकी सरगोशियां जो है वो सुन ही नहीं सकते। बला, हाँ क्यों नहीं, हमें खबर है। फिर अल्लाह ताला इसकी एक दलील देते हैं, वो क्या है, वह रसूलुना, और हमारे फरिश्ते, यहाँ पे रसूल से मुराद फरिश्ते हैं, और हमारे फरिश्ते क्या करते हैं, लदैहिम, इनके साथ, यक्तुबून, लिखते हैं, कि जो कुछ ये करते हैं उस वक्त फरिश्ते कोई इधर उधर थोड़ी होते हैं, हमारे फरिश्ते इनके साथ लगे हुए होते हैं, किरामन कातिबीन हैं, इनके साथ लगे हुए हैं। या लमूना मा तफलून, और अल्लाह ताला उन फरिश्तों के बारे में क्या कहते हैं कि फरिश्ते वो तमाम बातें नोट करते चले जाते हैं जो इंसान जो है वो करता है। तो अल्लाह ताला खुद भी सुनते हैं। इस पर दलील क्या है कि बलाहा क्यों नहीं, अल्लाह समी है, सुनता है, अल्लाह बसीर है, देखता है, कुरान में कई जगह ये बात मिलती है ना आपको। फिर दूसरी दलील क्या है कि फरिश्ते अल्लाह की CID है, पुलिस है, जो इंसान की हरकत और सकनात नोट करते हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद। कुल इन काना लिर्रहमानी वलद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती, फअना अव्वलुल आबिदीन, आबिद की जमा है आबिदीन, मैं होता पहला इबादत करने वाला, तो सबसे पहले मैं इबादत करने वाला होता। तो बात क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अहले मक्का को ये बात समझाई जा रही है कि मेरी कोई हटदर्मी नहीं है कि रहमान की औलाद है और मैं मान नहीं रहा, मैं तो मानता अगर होती, तो असल बात क्या है कि है ही नहीं औलाद, क्योंकि मेरा काम है इबादत करना, अतात करना, मैं तो वफादार बंदों में से हूं, तो सबसे पहले मैं जो है वो अतात करता। और आपको पता है पैगंबर सबसे पहले ईमान लाने वाले और सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, असलम तो लिरब्बिल आलमीन, सुबहाना पाक है रब्बिस समावाती वल अर्द, रब आसमानों का और जमीन का। तो यहां पर जो है क्या कहा जा रहा है, फिर जो है वो दलील दी जा रही है कायनात से कि आसमानों और जमीन को पालने वाला कौन है, रब है, और वो पाक है। पाक किस चीज से है कि उसने किसी को अपने इख्तियारात में अपने साथ शामिल नहीं किया, उसकी कोई औलाद नहीं है। उसी खालिक भी वही, मालिक भी वही, रब भी वही, रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून। तो वो रब जो है सिर्फ आसमान और जमीन का ही नहीं है, बल्कि इसके साथ जो है वो रब जो है वो अर्श का भी है। तो आप देख लीजिए कि यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि आसमान का भी, आसमान के अर्श का भी, पूरे इक्तदार का, और फिर जमीन का, गोया कि हर चीज का वो रब है। और अम्मा यसिफून के मानी क्या है, वस्फ, वोस्वाद फास या वस्फ, किसी की खूबी बयान करना और साफ बयान करना। तो जो कुछ ये बयान करते हैं सुबहाना वह उससे पाक है, तो अल्लाह ताला जो है उससे मुबर्रा है। जो शिर्किया बातें ये करते हैं, फजर हूं, बस इनको छोड़ दो, वह उजाल रा से है, और इसके मानी क्या होते हैं, किसी चीज को जो है वो काबले इतनाई ना समझा जाए, उसको छोड़ दिया जाए। तो क्या है कि अच्छा बस इन्हें रहने दो, इन्हें छोड़ दो, यखूदु खावो द्वार जो है, इसके मानी क्या होते हैं, इसके मानी ये होते हैं कि जैसे कोई जो है वो क्या कर रहा है, किसके अंदर, हाँ हौज के अंदर गोता लगाना, बहुत गहराई तक जाना। तो अब जब हौज के अंदर कोई चीज नहीं होती, इंसान दूर तक जाता है, अंदर तक जाता है गोता जब लगाता है, तो इसी से ये लफ्ज जो है वो बक बक करने, बकवास करने, बहुत बातें करने, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि ये जो बहस मुबाहसा कर रहे हैं, ये जो मुजादला कर रहे हैं, फज़रहुम यखूदू, छोड़ दो इनको मुबाहसा करते हुए, इनको ये शिरकिया बातें करते हुए, शिरक करते हुए, बस इसी में छोड़ दो। वयल अबू, और लाभ से है, खेल कूद के लिए आता है। तो मुराद क्या है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये हदायत का रास्ता इख्तियार नहीं करते तो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, ये दुनिया के खेल कूद में लगे रहें। बाज़ तालिबे इल्म होते हैं कि वो पढ़ाई के दिनों में भी, जैसे स्कूल में है, यूनिवर्सिटी में है, जैसे हम देखते थे हमारी बाज जो क्लास फेलो ऐसी थी कि जो बाहर पीरियड मिस करती थी और बाहर कैफेटेरिया में जाकर जो है चाय पी रही हैं, या बाहर बैठी हैं, हंस गपियां खुश गपियों में मसरूफ हैं, और कुछ जो थे वो फौरन पहले से आके बैठते थे कि क्लास में तैयारी करनी है। तो फिर क्या होता है कि जो तैयारी करने वाले हैं वो उनको नहीं कहते क्या हो तुम भी करो, कहते हैं अच्छा रहने दो इनको, खुद ही पता चल जाएगा, जब फेल होंगे ना फिर समझ आ जाएगी, फिर वो लोग रोते पीटते हैं, है ना। इसी तरह बाज बच्चे जो है होमवर्क नहीं करते, खेल में लगे रहते हैं, फिर अगले दिन स्कूल जाते हैं तो क्या होता है कि जाहिर है कि फिर सजा मिलती है। तो दुनिया में कुछ लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे, और होमवर्क क्या था कि थिंकिंग, टॉकिंग और एक्शन, ये तीन चीजें हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है, उनको करना था अल्लाह की रजा के मुताबिक। तो कहा जा रहा है कि इनको रहने दो, खेलते रहें, हत्ता युलाकू, यहां तक कि मुलाकात करें, यौमहुमुल लजी, यहां तक कि ये मुलाकात करें, यहां तक कि ये देख लें उस दिन को, अल्लाजी, वो जिसका यू अदून वादा किया जाता है, क्योंकि बार बार बताया जाता था कि कयामत आने वाली है, तो जल्दी इनको पता चल जाएगा जब कयामत का दिन आएगा, फिर इनकी आंखें खुलेगी, फिर इनकी पट्टी उतरेगी आंखों की, गफलत से ये बेदार होंगे। वह अल्लाजी, और वही तो है, फिस समाई, आसमान में, इलाहुन इलाह, और वो अल्लाह आसमान में भी इलाह है, वह फिल अर्दी इलाहुन, और जमीन में भी इलाह है, वहु अल हकीम अल अलीम, और वो हकीम और अलीम है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि आसमान और जमीन का अलग अलग इलाह नहीं है, बल्कि सारी कायनात का एक ही इलाह है, और ये जो पूरी कायनात है ये अल्लाह की हिकमत पर मबनी है, और जो भी इसके फैसले हैं अल्लाह के, वो हकीमाना भी हैं और मजबूत है। हिकमत के दो मानी याद रखने हैं, और अलीम, और अल्लाह के पास तमाम हकायक का इल्म है, ऐसा नहीं है कि पता भी कुछ नहीं, सब कुछ पता है, खूब जानने वाला है। वह तबारक लजी, और निहायत बाबरकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो कौन है, कैसा है, बहुत बाला और बरतर है, बड़ा ही बाबरकत है। अल्लाजी, वो जिसने, वो जिसके लिए, लहू उसी के लिए है, मुल्कु समावाती वल अर्दी, आसमानों और जमीन की बादशाहत, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इसके दोनों के दरमियान है, तमाम आसमान तमाम जमीनें, मुराद कितने हैं, सात, और जो कुछ इनके दरमियान है, वो जो अल्लाह है, तो इन सारी चीजों की जो हुकूमत है वो अल्लाह के लिए है, वो बादशाह है इन सब का। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अल्लाह की बादशाहत को कबूल कर लेना चाहिए। वो हाकिम है तो उसका महकूम बनकर रहना चाहिए, खालिक है तो उसकी मखलूक बनकर जिए, वो हासिब है, हसीब है, तो फिर आखिरत की तैयारी करें, क्यों ना करें। वइंदहु इल्मुस सा, और उसी के पास है कयामत का इल्म, कोई पैगंबर और फरिश्ता नहीं जानता, अल्लाह को पता है कयामत कब आएगी। वइलैहि तुरजऊन, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वला यमलिकु, और नहीं वो इख्तियार रखते, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, क्यों, इसलिए कि मुल्कु समावाती वल अर्दी वमा बैनहुमा, वो किसके लिए है, लहू उसके लिए है। तो ये जो तुम्हारे देवता हैं, ये तुम्हारे शरीक, वली, पीर, और जिनको तुम اللہ کی خدائی میں شریک کہتے ہو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. الذین وہ لوگ یدعونا جن کو تم پکارتے ہو من دون ہی اللہ کے سوا. کس کے لیے تم پکارتے ہو؟ شفاعت شفاعت کے لیے. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی پکڑ سے بچا دیں گے؟ نہیں, اللہ حقیقت کھول کر سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ جن کو تم اللہ کے سوا شفاعت کے لیے پکارتے ہو. اور شین فا عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تا کو جوڑا بنا دینا, ایک کو دو کر دینا. تو شفاعت کیا ہے کہ کسی کی رائے سے رائے ملانا. ایک رائے تھی, اس کے ساتھ آپ نے بھی اپنی رائے ملا دی, تو ان کے پاس جو ہے یہ شفاعت نہیں کر سکتے. الا من شاہد بالحق, کون شفاعت کر سکتا ہے؟ دلیل کیا دی؟ سوائے اس کے من شاہدہ, جو گواہی دے, جس نے گواہی دی بالحق کی, حق کی. وہم یعلمون, اور وہ علم بھی رکھتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے سفارش کے لیے دو شرائط جو ہے وہ سامنے رکھی جا رہی ہیں, اور وہ دو جو شرائط ہیں جو رکھی جا رہی ہیں وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ حق کی گواہی دیں کہ جن کی وہ سفارش کرنے لگے ہیں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی, ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ جو توحید کا لمبردار ہوگا وہ تو حق پر رہا, اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے جو نیک ہے تو گویا کہ اس کی نیکی کی سفارش کی جا سکتی ہے. لیکن اگر کسی نے شرک کیا, کسی نے قرآن کھولا ہی نہیں, ساری زندگی گناہ کیے, تو پھر اس کی سفارش کیسے ہو؟ اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سفارش جو ہے نمبر ون حق کی کرنا, اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد توحید کی علم و یقین کے ساتھ شہادت دینا. پھر اس سے مراد کیا ہے کہ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پیغمبر بھی جو ہے وہ سفارش اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے. وہ حق تو کہیں گے, جو ابھی سفارش کرے گا اگر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, لیکن کب؟ جب کہ اللہ ان کو اجازت دیں, اور اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش کر بھی نہیں سکتا, ہے نا. یہی بات آپ جو ہے وہ سورت نبا میں بھی پڑھ چکی ہیں, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. تو مجرم کی سفارش کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر دوسری بات کیا ہے؟ وہم یعلمون, اور سفارش کرنے والا جو ہے سفارش تب کرے جب علم اور یقین ہو اس کو. سفارش کی بنیاد علم ہے, بے علمی نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ سفارش اس وقت کی جائے جب کہ کوئی علم ہو, کوئی بات جو ہے اس کا پتہ ہو. تو گویا کہ یہ جو سفارش کرنے والے ہیں جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے, ان کی گواہی مردود ہے. دوسری بات کیا ہے کہ وہ ایسی گواہی دینے والے ہیں جو جس کی بنیاد علم پر نہیں ہے, انہیں کچھ پتا بھی نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے سب چیزوں کا. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر تم ان سے سوال کرو, من خلقہم, کہ ان کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, پھر تم جو ہے وہ کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو, پھر تمہیں کہاں سے دھوکا لگ جاتا ہے. تو اف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چیز کو صحیح رخ سے پلٹ دینا, کسی کو صحیح رخ سے الٹ دینا, الٹا پھیر دینا. تو پھر توحید کو چھوڑ کر تم شرک کیسے کرنے لگتے ہو؟ پھر تم اللہ کے اختیارات, اللہ کے حقوق, اللہ کی صفات میں جو ہے دوسروں کو کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا ہو جاتا ہے تم کو؟ وقیل ہی, پھر فرمایا قسم ہے اس کے کہنے کی. قیل جو ہے یہ مصدر ہے, اور معنی کیا ہے کہ اس کے کہنے کی قسم, قسم ہے اس کے کہنے کی. تو ہی کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ قسم ہے رسول کے اس قول کی, یا ربی, اے رب, ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. بڑی سخت بات ہے, قسم ہے رسول کی اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. اس کے کیا معنی ہیں؟ کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ نہایت مشکل آیات میں سے ہے. اور وہ جو ہے وہ سے مراد بعض لوگوں نے وہ قسمیہ لیا ہے کہ قسم ہے رسول کے قول کی. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اسی پر بات کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ قسمیہ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ عطف کا ہے, جیسے دو جملوں کو ملانے کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہے. تو لیکن مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اصل میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قسمیہ ہے, وہ کہتے ہیں فَأَنَّا يُوفَكُونَ جو ہے اس کا اس سے تعلق ہے, اور یہ کس طرف پھیرے جاتے ہیں. تو اہل مکہ کا شرک کرنا, کفر کرنا, استہزاء کرنا, مذاق اڑانا, یہ پیچھے جو آپ نے آج کے سبق کا آغاز پڑھا تھا ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ٹھٹھا مذاق, تو اب جو ہے پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے پھر قیلے ہی کی ضمیر پھرتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مان کر نہیں دیتے کہ ان کے معبودوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے, اور پھر بھی اصل خالق کو چھوڑ کر اپنے ہی معبود جو ہیں ان کی یہ عبادت پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں. تو رسول کا قسم کھانا لوگوں کی اس روش پر جو ہے وہ دلیل ہے کہ یہ ہر درم لوگ ہیں. پیچھے سے پتا چلا نا یوفقون ہر درم ہے, تو قسم کھانا بھی اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہر درم ہیں اور اس لیے یہ بات جو ہے وہ مان کر ہی نہیں دیتے. اچھا اب دوسری بات جو ہے, جو ایک اور رائے ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا قیل ہی یہ کس کا قول ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ اوپر ہے من شہد بالحق, جو حق کے مطابق گواہی دیں گے. تو حق کے مطابق جو بات کہیں گے تو ان کی گواہی کیا ہوگی کہ اے رب ان کے ایمان نہ لانے میں اصلی قصور انہی کا ہے, یہ خود ایمان لانے والے نہیں تھے. تو بیچ میں یہ جو بات آ گئی نا آیت نمبر 87, وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ معتزرہ ہے, معترضہ. بیچ میں جیسے بات کرتے کرتے ایک بیچ میں جملہ نہیں آ جاتا, تو ایسے جملہ آ گیا ہے. تو مشرکین قیامت کے دن جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ جو ہے وہ اپنی جو شرک کرنا ہے اس کا عذر پیش کریں گے, تو ان کے اس الزام کو ان کے منہ پر دھر مارا جائے گا. اور کون یہ سچی گواہی دے گا؟ فرشتے سچی گواہی دیں گے, کیونکہ فرشتوں کے پاس تو پورا کیا چھٹا موجود ہے نا. اور بہرحال نیک لوگ جو ہیں وہ سچی گواہی دیں گے, جیسے انبیاء, کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو پوری ٹھیک ٹھیک بات جو تھی وہ بتا دی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 89 میں جو ہے ایک خاص پیغام دیا جا رہا ہے, اور وہ خاص پیغام کیا ہے, فَاصْفَحْ عَنْهُمْ, آپ کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ وَاصْفَحُوا کا معاملہ کریں. تو صَفْحٌ جو ہے پہلے بھی آپ یہ بات پڑھ چکی کہ جو ہے وہ چوڑائی کے رخ پر, جیسے کسی چیز کا جو ہے وہ چوڑا ہونا ہے نا, صفن گردن کو ایک طرف موڑ لینا, پھیر لینا, جسم کے چوڑے حصے کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح وَاصْفَحُوا جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, یہ غفارا یا اف جو ہے اس سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے, اس میں اس سے زیادہ بلاغت اور وسعت پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں جیسے کسی سے جب اف و درگزر کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آپ کی بات چیت ہوتی ہے, آپ اس کو اس کی ساری باتیں بتا کر کہتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا, یا یہ کہ آپ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں, پھر کچھ نہ کچھ جواب دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اپنا دکھ اپنا رونا, اور پھر معاف کرتے ہیں. لیکن جو یہ وَاصْفَحُوا ہے نا, یا فَاصْفَحْ یہاں پہ آرڈر کا صیغہ ہے, یہ واحد کے لیے آیا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو ایسے معاف کر دینا اس کو احساس بھی نہ ہونے دینا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا قصور ہے اس سے اس طرح پہلو تہی کرنا, اعراض کرنا, کہ اس پر برائی کا ایک جملہ بھی نہ بولنا, ترک ملامت بھی چھوڑ دے. بعض اوقات معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ملامت ساری زندگی کرتے رہتے ہیں. معاف جن کو کر بھی دیا ہے نا, معاف نہیں کرتے اصل میں, کیا کرتے ہیں جب وہ سامنے آتا ہے کہتے ہیں میرے زخم ہرے ہو گئے, آج مجھے بالکل پارٹی میں مزہ نہیں آیا, معاف تو کر دیا تھا لیکن جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو ساری پھر وہ بات گھر آ کے بتاتے ہیں, کبھی شوہر کو, کبھی بچوں کو, کبھی دوستوں کو, کتنا اس کا ذکر کرتے ہیں. میں سوچ رہی تھی اس آیت پر اللہ کے نبی کا اسوہ اتنا بہترین اور اہل مکہ کی سازشیں اتنی بدترین، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا فاصفح عنہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. آپ اس کا یہ معنی بھی لے سکتی ہیں کہ ان کو ان سے پہلو تہی کر لو، یہ معنی بھی لے سکتی ہیں کہ ان سے درگزر کا معاملہ کریں. وقل سلام، اور سلام جو ہے یہاں ودا کے معنی میں ہے، کہ آپ جو ہیں انہیں رخصتی کا سلام کہہ دیں. اور اس کے معنی کیا ہے کہ آپ جو ہیں جیسے ایسا سلام ہوتا ہے نا کہ جیسے جب جاہل تمہارے منہ کو آ لگے قالو سلاما تو ان کو کہتے ہیں کہ اچھا، پھر ان کو اس محفل سے وہ ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ بات ماننا نہیں چاہتے نا، تو کہتے ہیں کہ یہ متارکے کا سلام ہے، وہاں سے ہٹنے کا سلام ہے. اس کے معنی یہ ہیں تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ، اگر تم باز نہیں آتے تم اپنا کام کرتے چلو چلے جاؤ اور ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سورۃ قصص آیت 55. وقل سلام فسوف یعلمون، پس ان قریب ان کو پتا چل جائے گا. تو مراد کیا ہے کہ ان کا انجام، ان کے کیوں کا جو کیا چھٹا ہے جلدی ان کو پتا چل جائے گا، تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں. تو یہ تھی سورۃ زخرف، جو ہمیں ایک طرف دنیا کی چکا چاندنی اور دنیا کی زیب و زینت اور ملما سازی اور دنیا کی مال و دولت کو سامنے لا کر رکھتی ہے، اور دوسری طرف آخرت کا جو زخرف ہے وہ ہمارے سامنے لاتی ہے. اور یہ بھی بتاتی ہے کہ آخرت کا زخرف جو ملے گا، آخرت کی نعمتیں جو ملیں گی، وہ ملیں گی ایمان اور عمل صالح اور تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں، اور وہ ملیں گی قرآن پر جو ہے اللہ کی آیات پر جو ہے وہ ماننے کے نتیجے میں، اور اسلمت لرب العالمین کہنے کے نتیجے میں. تو سورۃ زخرف جو ہے اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ یہ وہی سورۃ ہے جس کا نام بھی آل ہوا میم میں آتا ہے نا، تو جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کی سیر کر لی. کیسی خوبصورت دلائل ہیں جو اس سورۃ کے اندر جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے بندوں میں شامل کر لے. اور کہنے سے شامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ جس پر ایمان لائے ہیں ہماری حرکتیں، ہماری سرگرمیاں، ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری خواہشات اس کی گواہی نہ دیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.